नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज 11:30 बजे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। श्री नीतीश कुमार को कल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। पटना में गठबंधन के 5 घटक दलों के नवनिर्वाचित विधायकों की संयुक्त बैठक में ये निर्णय लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह में जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रपति कल शाम हैदराबाद के पास बोलारम में राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव के दूसरे संस्करण का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। 10 दिन के महोत्सव में पश्चिमी भारत की परंपराओं को हैदराबाद में प्रदर्शित किया जाएगा। हैदराबाद से हमारे संवाददाता समरेश ने बताया है कि इस समारोह में पश्चिमी कला संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा।
भारतीय कला महोत्सव 22 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक राष्ट्रपति निलयम हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है और इस बार का थीम है वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स, पश्चिम की परंपरा जिसे हम बोल रहे हैं। तो ये वहाँ के जितने भी आप व्यंजन है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, वहाँ के डांस फॉर्म्स है, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट है, वहाँ के हैंडलूम्स है, वो सब डिस्प्लेड रहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 नेताओं के 20वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की यात्रा पर रहेंगे। ये किसी विकासशील देश में आयोजित होने वाला लगातार 4था G20 शिखर सम्मेलन होगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री के शिखर सम्मेलन के सभी 3 सत्रों को संबोधित करने की संभावना है। सम्मेलन से अलग श्री मोदी जोहान्सबर्ग में कुछ नेताओं के साथ बैठकें भी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ 16वें विदेश मंत्री फ्रेमवर्क ड्वालेक की सहअध्यक्षता करेंगे। सुश्री वॉन्ग इस वार्ता में भाग लेने के लिए कल नई दिल्ली पहुंची। इस यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने का अवसर मिलेगा। एक आधिकारिक वक्तव्य में सुश्री वॉन्ग ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी एक शांतिपूर्ण, स्थिर और खुशहाल हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए गहरे तालमेल और साझा दृष्टिकोण को दर्शाती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया साइबर और रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, रक्षा और लोगों के बीच संबंधों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देंगे। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा का विस्तार करते हुए कोचीन, कालीकट और अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को शामिल किया है। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोची हवाई अड्डों पर ये सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। यूएई के नागरिकों को अब भारत के 9 प्रमुख हवाई अड्डों पर ये सुविधा उपलब्ध होगी।
इस सुविधा का लाभ केवल वही नागरिक उठा सकते हैं जिन्होंने पहले भारतीय ई वीजा या नियमित कागजी वीजा प्राप्त किया हो। योजना के तहत भारत आने वाले यूएई के नागरिक 60 दिनों तक भारत में रह सकते हैं। ये वीजा 60 दिनों की अवधि के भीतर 2 बार आने की अनुमति देता है। आवेदकों के पास कम से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। आवेदक से धन, आवास और वापसी या आगे की यात्रा का प्रमाण मांगा जा सकता है। ये वीजा सुविधा किसी भी ऐसे यूएई नागरिक के लिए उपलब्ध नहीं है जिसके माता पिता या दादा दादी पाकिस्तान में पैदा हुए हों या वहाँ के स्थायी निवासी हों। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी 2025 का आज से गोवा में शुभारंभ होने जा रहा है। शानदार परेड के साथ महोत्सव शुरू होने से पहले सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन आज वेव्स फिल्म बाजार का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में आज शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज गरज, बिजली और तेज हवा के साथ तेज वर्षा का अनुमान है। इधर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास के राज्य सरकारों को नवम्बर और दिसम्बर में स्कूली खेल प्रतियोगिताओं को टालने के लिए पत्र लिखा है। बढ़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक के संबंध में कल एक बैठक में आयोग ने गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए ये फैसला लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।